ये आकाशवाणी दिल्ली है। हाँ मुख्य समाचार। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली भारत का शीर्ष शैक्षणिक संस्थान माना गया है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने गर्मियों की छुट्टियों में विद्यार्थियों के लिए वैज्ञानिक, कलात्मक, सांस्कृतिक और अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने नमो भारत कॉरिडोर पर अवैध पोस्टर और ब्रांडिंग के खिलाफ अभियान में 300 से अधिक स्तंभों से अवैध प्रचार सामग्री हटाई। दिल्ली पुलिस की टीम ने पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार से बांग्लादेश के 17 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार कर निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जनजातीय कार्य मंत्रालय दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के साथ मिलकर सिकल सेल रोग के उपचार के लिए दवा विकसित करने की प्रतियोगिता आयोजित करेगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। क्यूएस वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली भारत का शीर्ष शैक्षणिक संस्थान बनकर उभरा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज जारी हुए इस रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली को 123वें पायदान के साथ दुनिया के शीर्ष 125 संस्थानों में शामिल किया गया है।
आईआईटी दिल्ली का यह प्रदर्शन उनके द्वारा अब तक प्राप्त की गई सर्वोच्च क्यूएस वैश्विक विश्वविद्यालय रैंकिंग भी है। संस्थान को शैक्षणिक प्रतिष्ठा, नियोक्ता प्रतिष्ठा और स्थिरता जैसे कई मानकों के तहत देश के शीर्ष दो संस्थानों में स्थान दिया गया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में आईआईटी दिल्ली के रैंकिंग सेल के प्रमुख प्रोफेसर विवेक बुआ ने बताया कि संस्थान ने पिछले कई सालों के अथक प्रयासों से विश्व स्तरीय अनुसंधान और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करके यह मुकाम हासिल किया है।
जो आईआईटी खुद का जो स्पॉन्सर्ड रिसर्च ग्रांट यूज करके आईआईटी दिल्ली ने कई सारे हाई एंड रिसर्च फैसिलिटीज एस्टेब्लिश किए हैं, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन इनिशिएट किए हैं और इन सभी प्रयत्नों का ये नतीजा है कि आईआईटी की रैंक 130 आई है।
इसके अतिरिक्त दिल्ली के अन्य संस्थानों ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाया है। इस रैंकिंग में दिल्ली विश्वविद्यालय को 328वां स्थान हासिल हुआ। एम्प्लॉयमेंट आउटकम की श्रेणी में पिछले साल के मुकाबले दिल्ली विश्वविद्यालय 14 स्थानों की बढ़ोतरी के साथ 30वें स्थान पर पहुंच गया है और देश के संस्थानों में पहले स्थान पर है। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में डीयू के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने बताया कि ओवरऑल स्कोर में उल्लेखनीय सुधार विश्वविद्यालय की बढ़ती अकादमिक उत्कृष्टता और वैश्विक प्रतिष्ठा को रेखांकित करता है।
जो हमारे मार्क्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे काम हो रहा है, जैसे कि रिसर्च है, साइटेशन पर टीचर है, वो सब कुछ इम्प्रूव हुआ है, तो मैं समझता हूँ बहुत सारा जो गैप है हमने वो पूरा किया है।
वहीं जामिया मिलिया इस्लामिया ने इस रैंकिंग में 761 से 770 बैंड में स्थान प्राप्त किया है, जो उसके पिछले प्रदर्शन से करीब 100 पायदान अधिक है। जामिया के कुलपति प्रोफेसर मजहर आसिफ ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान बेहद संतोषजनक है और विश्वविद्यालय के उत्कृष्ट शिक्षण मानकों तथा शोध में उत्कृष्टता को दर्शाता है। लंदन की कंपनी क्वाक्यूरेली साइमंड्स क्यूएस द्वारा आयोजित रैंकिंग में वैश्विक स्तर पर 8400 से अधिक संस्थानों का मूल्यांकन किया गया, जिसमें शीर्ष 1501 विश्वविद्यालयों के परिणाम प्रकाशित हुए। प्रादेशिक समाचार के लिए आदर्श।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 का स्वागत किया है और इसे वैश्विक शिक्षा तथा अनुसंधान में भारत के बढ़ते कद का प्रमाण बताया है। सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के एक पोस्ट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2026 रैंकिंग देश के शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आई है। श्री मोदी ने फिर से पुष्टि की कि सरकार भारत के युवाओं के लाभ के लिए अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद एनडीएमसी ने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान अपने स्कूलों में नामांकित छात्रों के लिए वैज्ञानिक, कलात्मक, सांस्कृतिक और अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों की शुरुआत की है। एक रिपोर्ट।
नगर पालिका परिषद ने नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र NSC के सहयोग से 5 दिवसीय विज्ञान ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया। शिविर में विभिन्न NDMC स्कूलों के 100 चयनित छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वहीं रचनात्मक और सांस्कृतिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए NDMC ने राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा दिल्ली सरकार की साहित्य कला परिषद और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के साथ मिलकर नगर पालिका परिषद ने स्कूलों में छात्रों के लिए संगीत, रंगमंच, नृत्य, ललित कलाओं सहित समर्पित कथक और लोक कला कार्यशालाओं पर ग्रीष्मकालीन कार्यशालाएं आयोजित की। NDMC ने बताया कि ये प्रयास कला के साथ साथ छात्रों में रचनात्मकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने में अहम भूमिका निभाते हैं तथा उन्हें कक्षा से परे ज्ञान के साथ सशक्त भी करते हैं। आदर्श की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
दिल्ली के SC और ST कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज दिल्ली सचिवालय में SC ST OBC छात्रों की छात्रवृत्ति और अन्य योजनाओं को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में राजधानी के प्रमुख विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के कुलपति तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के सुझावों पर चर्चा हुई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने आज लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल की स्थिति पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ बातचीत की। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर सिंह ने कहा कि उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के बाहर हो रहे अतिक्रमण को रेखांकित किया।
आज जो बैठक थी ऑनरेबल LG साहब, हमारी ऑनरेबल CM मैडम और मैं LNGP की इन्फोर्समेंट के ऊपर विषय थे, जो भी हम बता नहीं सकते हैं, और उसी पे सेंसिटिव इश्यूज था तो लेकर बैठक थी। सारे डिपार्टमेंट को बुलाया गया।
दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह ने आज सिविल लाइन्स जोन के इंदिरा विहार में साफ सफाई की स्थिति का निरीक्षण किया। इस दौरान महापौर ने क्षेत्र में सफाई व्यवस्था, जल निकासी की तैयारी और हरित क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया। आगामी मानसून को देखते हुए उन्होंने नगर निगम की टीम को प्राथमिकता के आधार पर नालों की डीसिल्टिंग, कचरा निष्पादन और पार्कों की नियमित देखरेख सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से दिल्ली सचिवालय में मुलाकात की। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि इस चर्चा में दोनों नेताओं ने शासन, नवाचार और समावेशी विकास में तालमेल के रास्ते तलाशे तथा टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज के साथ सहयोगात्मक संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। इस दौरान दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मंजिंद्र सिंह सिरसा भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि श्री ब्लेयर दिल्ली की भाजपा सरकार द्वारा 100 दिनों में किए गए कार्यों से प्रभावित नजर आए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने नमो भारत कॉरिडोर पर अवैध पोस्टर और ब्रांडिंग के खिलाफ अभियान में 300 से अधिक स्तंभों से अवैध प्रचार सामग्री हटाई है। एक रिपोर्ट।
NCRTC ने बताया कि ये अभियान इस कॉरिडोर की स्वच्छता, संरचनात्मक सुंदरता और सार्वजनिक गरिमा को बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने रेखांकित किया कि ये संपत्तियां सार्वजनिक संपत्तियां हैं और इन पर किसी भी प्रकार का नुकसान न सिर्फ एक सार्वजनिक अपराध है बल्कि एक दंडनीय कानूनी अपराध भी है। परिवहन निगम ने चेतावनी दी कि इस तरह की गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों और संस्थानों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये अभियान कॉरिडोर के अन्य हिस्सों में भी अब विस्तारित किया जा रहा है। आदर्श की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
राजधानी में सुचारू और सुरक्षित कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने आज दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। श्री सूद ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा के लिए निर्बाध अंतर्राज्यीय समन्वय सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की बैठक के दौरान निर्देश दिए गए। उन्होंने आश्वासन दिया कि दिल्ली सरकार कांवड़ियों को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के साथ साथ आम जनता के दैनिक जीवन को निर्बाध रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
इस यात्रा में सभी यात्री अपने फेथ को बहुत आराम से परस्यू करें, साथ ही साथ दिल्ली की जनता को और किसी किस्म की बाधा उसके जीवन में ना आए, वो भी दिल्ली भी सुचारू रूप से चले, ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। इसके लिए जो सिंगल विंडो परमिशन की व्यवस्था की गई है उसको आगे बढ़ाते हुए पुलिस, पावर, फायर और ड्यूसिव जो टॉयलेट्स प्रोवाइड करेगा और MCD जिसको साफ सफाई करनी है।
दिल्ली पुलिस की टीम ने पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार से बांग्लादेश के 17 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार कर निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूछताछ के बाद पुलिस ने पता लगाया कि ये अवैध प्रवासी जंगल के रास्ते एक्सप्रेस ट्रेनों के माध्यम से भारत में घुस गए और यहीं रह रहे थे। विदेशी पंजीकरण कार्यालय से प्रतिबंध आदेश प्राप्त करने के बाद सभी अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश वापस भेजने के लिए महिंद्रा पार्क थाने में हिरासत में रखा गया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में फिंगरप्रिंट ब्यूरो और बम निरोधक दस्ते के आधिकारिक प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। कार्यक्रम में अपराध शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव और दिल्ली पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आज विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि ये सिकल सेल रोग से पीड़ित लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि ये दिन इससे पीड़ित समुदायों को शिक्षित करने, शीघ्र निदान को बढ़ावा देने और चल रहे शोध का प्रोत्साहित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के साथ मिलकर सिकल सेल रोग के उपचार के लिए दवा विकसित करने की एक प्रतियोगिता आयोजित करेगा।
सिकल सेल रोग का जनजातीय क्षेत्रों में काफी प्रकोप है। प्रतियोगिता में चुने गए प्रस्ताव को 10 करोड़ रुपए तक का वित्त पोषण किया जाएगा। जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर दिल्ली एम्स में एक सभा को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2047 के अंत तक देश से सिकल सेल रोग के उन्मूलन के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने सिकल सेल के रोगियों और उनके परिवारों के साथ भी बातचीत की और उन्हें केंद्र और राज्य सरकारों से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने रोगियों के लिए निशुल्क दवा की व्यवस्था का भी आश्वासन दिया। सिकल सेल रोग एक आनुवंशिक रक्त विकार है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं असामान्य आकार की हो जाती हैं। ये कोशिकाएं कठोर और चिपचिपी होती हैं, जिससे वे रक्त वाहिकाओं में फंसकर रक्त के प्रभाव को बाधित कर सकती हैं। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी।
जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने कहा है कि सरकार जनजातीय समुदाय में सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन की दिशा में काम कर रही है। ये रोग जनजातीय समुदाय में चिंता का कारण बना हुआ है। श्री ओराम ने आकाशवाणी समाचार के साथ साक्षात्कार में बताया कि इस बारे में अनुसूचित समुदायों को जागरूक किया जा रहा है।
सिकल सेल ट्राइबल में एक बहुत बड़ा समस्या है, मलेरिया और सिकल सेल। ऑलरेडी एम्स के साथ हम लोग टाई अप कर चुके हैं और अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्क्रीनिंग हो चुका है और उनको कार्ड दिया गया है। मलेरिया तो ऑलमोस्ट इराडिकेटेड है, बाकी जो सिकल सेल एनीमिया भी हम इराडिकेटेड कर देंगे और इसके लिए बहुत सारे स्थान में स्क्रीनिंग हो रहा है, उनके लिए अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है और उनको समझाया जा रहा है।
ये पूरा साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे से 100.1 MHz आकाशवाणी FM गोल्ड चैनल और समस्त नेटवर्क पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल के बारे में विशेष श्रृंखला के अंतर्गत होगा। पुनर्वास महानिदेशालय DGR कल नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के पूर्व अधिकारियों के लिए विशेष रूप से रोजगार मेला आयोजित करेगा। रोजगार मेला रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली में आज दोपहर के समय दिन भर धूप खिली रही और लोगों को उमस का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहने, तेज हवाएं चलने और हल्की वर्षा होने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली भारत का शीर्ष शैक्षणिक संस्थान माना गया है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने गर्मियों की छुट्टियों में विद्यार्थियों के लिए वैज्ञानिक, कलात्मक, सांस्कृतिक और अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने नमो भारत कॉरिडोर पर अवैध पोस्टर और ब्रांडिंग के खिलाफ अभियान में 300 से अधिक स्तंभों से अवैध प्रचार सामग्री हटाई है। दिल्ली पुलिस की टीम ने पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार से बांग्लादेश के 17 अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार कर निर्वासन की प्रक्रिया शुरू कर दी है और जनजातीय कार्य मंत्रालय दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के साथ मिलकर सिकल सेल रोग के उपचार के लिए दवा विकसित करने की प्रतियोगिता आयोजित करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।